آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
سامعین، یکم جولائی 2026 کے آتے ہی نئے مالی سال میں ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز کی جانب سے ویزا فیس میں نمایاں اضافے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جہاں پر کئی ویزا کی فیس میں تقریباً 25% تک کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں پر تمام ویزا فیس متاثر ہوئی ہیں، وہیں سب سے بڑا اضافہ اسٹوڈنٹ ویزا فیس اور 485 ورک ویزا میں کیا گیا ہے۔ 485 ورک ویزا کی فیس سال میں دوسری مرتبہ بڑھائی گئی ہے، جو گزشتہ برس $2,600 سے بڑھ کر پہلے $4,600 اور اب تقریباً $5,750 ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ آیا یہ فیس کس طرح سے بڑھائی گئی ہے اور اس کا لوگوں پر کس طرح کا اثر پڑے گا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران علی لاکھانی، جو کہ ویژن کنسلٹنسی کے نام سے اپنی کمپنی چلاتے ہیں اور گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے مارا ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عمران ایس پی ایس اردو سے بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیس میں اضافہ ہے، یہ کس تناسب سے کیا گیا ہے؟
یہ فیس اراؤنڈ 25% بڑھائی گئی ہے، جبکہ انفلیشن قریب 4% چل رہا ہے۔
تو یہ مجھے ساتھ بتائیے گا کہ اس فی کے اندر جب ہم 485 اور اسٹوڈنٹ ویزا دیکھتے ہیں، اب ان کی فیس اس وقت کس جگہ پر کھڑی ہے؟ ایک بڑی بات کی جا رہی ہے 485 کے بارے میں کہ یہ فیس بار بار بڑھائی گئی ہے، اس سلسلے میں بھی بتائیے گا۔
اسٹوڈنٹ کی فیس جو پہلے $2,000 تھی، چاہے وہ آف شور سے اپلائی کرتے ہیں یا آن شور پہ ویزا اپلیکیشن لاج ہوتی ہیں، جو 2,000 تھی وہ 2,500 ہو گئی ہے۔ 485 کی جو اپلیکیشن تھی جو آن شور پہ تھی، اس کی فیس ابھی 4,600 تھی، بڑھ کے اب ہو گئی 5,750۔ یہ میں بات بتاتے چلوں آپ کو کہ یہ فیس فیبری 28 تک، اس کی فیس 2026 میں اس کی فیس 2,300 تھی، گورنمنٹ نے ریسنٹلی اس کی فیس 4,600 کی تھی اور دوبارہ فیس گورنمنٹ نے یہ 5,750 کر دی ہے۔ تو ود ان ون ایئر، ود ان 6 months، یہ فیس 2,300 سے لے کے 5,750 کر دی گئی ہے۔
تو اب ایک، اگر ہم تین بندوں کی فیملی کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ فیس تو ایک انڈیویژل ویزا اپلیکینٹ کی ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ فیملی موجود ہے، تو وہ کتنی فی دے گا؟ اور اگر وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پارٹنر بھی موجود ہے، تو وہ 485 کے لیے تقریباً کتنی فیس ادا کرے گا ویزے کی مد میں؟
اگر وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، فار ایگزامپل آپ نے کہا، اور اس کو ویزا ملا ہے سپوز 3 سال کا، پر کسی وجہ سے اس کے ریسرچ رک گئی ہے اور اس کو اب 3 یا 6 مہینے کا ویزا ایکسٹینڈ کرانا ہے، تو ایک نئی ویزا اپلیکیشن لانچ کرے گا، وہ شاید 3 مہینے کے لیے ہو چاہے 2 مہینے کے لیے ہو۔ اگر وہ اکیلا ہے اور اس صورت میں اس کی فیس $2,500 ہے، مگر لیکن اس کے پاس اگر ان کی وائف ہے اور ساتھ میں ایک بچہ ہے، تو اس کی فیس ہوگی $4,530، چاہے وہ 2 مہینے کے لیے ویزا ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہو۔ بٹ وہی اپلیکینٹ اگر وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو یہاں پہ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے 485 اپلائی کرنا ہے، تو اس کی ٹوٹل فیس ہو جائے گی $10,075۔
تو یہ جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں ان تمام مارکیٹ سے جن کے اندر اس وقت اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، جن میں بڑے ممالک شامل ہیں، آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، تو اس تمام تناظر میں آپ آسٹریلیا کو کہاں پر دیکھتے ہیں، خاص طور پر اس ویزا فی کے تناظر میں؟
انفارچونیٹلی آسٹریلیا کمپیٹیٹو نہیں ہے فی کے مقابلے میں۔ اگر فی کی بات کی جائے تو ہم یو ایس، یو کے، کینیڈا اور آسٹریلیا کو کمپیئر کرتے ہیں، ایون نیوزی لینڈ کو بھی ساتھ میں کمپیئر کرتے ہیں، تو آسٹریلیا کی فیس سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ میری خود کی بھی برانچز ہیں آؤٹسائڈ آسٹریلیا، وہ بھی اسٹرگل کرتی ہیں آسٹریلیا کو پروموٹ کرنے کے لیے۔
یہ بتائیے گا کہ یہ نہ صرف یہ وہ ویزاز ہیں جو عموماً اپلائی کیے جاتے ہیں، علاوہ ازیں ان ویزاز کو برج کرنے کے لیے جو برجنگ ویزاز ہیں، ان کی فی میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے کیا؟
بالکل وہ کی گئی ہے، اور وہ تو بہت ہی زیادہ فیس بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے میں برجنگ کا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ برجنگ ویزا बी अप्लाई करना होता है जब कोई भी किसी भी एप्लीकेंट के पास वीजा प्रोसेस चल रही होती है, उसके बाद ब्रिजिंग ए होता है, उसको अगर अपनी कंट्री को ट्रेवल करना है, वापस आना है, तो ब्रिजिंग बी चाहिए होता है। उसकी फीस कल रात तक $190 थी, गवर्नमेंट ने बढ़ा के $575 कर दी है ब्रिजिंग बी की फीस। ब्रिजिंग बी का मकसद ये होता है कि जो वो लोग जिनके वीजा एप्लीकेशन ऑनशोर पे चल रही है बट उनको ट्रैवल करना है, तो उनको ट्रैवल करके वापस आते हुए ये वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक एक भी बात आपको बताऊं कि 491 का जो वीजा है उसका प्रोसेसिंग टाइम 15 महीने से 23 मंथ चल रहा है, 23 महीने चल रहा है। 190 के एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 13 महीने से 17 महीने टाइम लग रहा है। अगर इतना टाइम लगेगा किसी भी एप्लीकेशन को, तो फिर इन एप्लीकेंट्स को अपनी फैमिली से मिलने के लिए या उनको कोई भी और एक्टिविटीज है, या फिर उनको घूमने के लिए भी अगर बाहर जाना है किसी कंट्री में, न्यूजीलैंड जाना है, तो उनको वीजा लेना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली ये उनको पे करना पड़ता है। पहले ये $100-$200 पर बढ़ के अब ये मुझे लग रहा है जैसे $500 कर दिए, मुझे तो लग रहा है शायद ये अगले साल $1,000 हो जाएगा।
फाहद जब्बार एडलिंक के नाम से एक कंसल्टेंसी भी चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब फाहद, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो फीस बढ़ने का फैसला है, क्या ये मतवक्को था या मार्केट के अंदर ये खबर जो थी वो एक सरप्राइज थी?
सिनेरियो ये है कि जो कि इनी अकाउंट था, जो कि पोर्टल होता है इमिग्रेशन का, इट वॉज अंडर मेंटेनेंस फ्रॉम 6 PM लास्ट नाइट। उसका सिनेरियो ये होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है और उस टाइम पे इस तरह का कुछ होता है, सो देर आर थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड। हमें एक्सपेक्ट होता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का होने वाला है, बट ये एकदम से जो बहुत ज्यादा फी इंक्रीज हो गई है, इसका एक्सपेक्टेड नहीं था। जहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं जो हम सोच रहे थे कि शायद के पोर्टल के अंदर हो जाएंगे, जो कि हुए भी हैं, बट द मेन थिंग इज के जो फी है उन्होंने वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर दी है। स्टूडेंट वीजा की फी जो कि ऑलमोस्ट $700 हुआ करती थी, उसको इंक्रीज करके पहले $1,600 किया, फिर $2,000 किया, एंड नाउ इट्स $2,500। और सेम सिनेरियो 485 की फी का है, 4,600 इंक्रीज कर दी गई थी, नाउ 5,750, 5,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो जो स्टूडेंट वीजा पे अपनी TR डालने की कोशिश कर रहे थे और जस्ट वेट कर रहे थे अपने कम्पलीशन का, वो सारे स्टूडेंट्स की अब हमें कॉल्स आ रही हैं, एंड दे आर सेइंग कि हम क्या करें, आप बताएं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है।
आप ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो लोगों के आपके पास मसाइल आते हैं वो क्या स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च कर रहे होते हैं या फिर वो वर्क वीज़ा यानी 485 की तरफ उनका रुझान होता है?
देखें, इसका सिनेरियो ये है कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी जिन्होंने स्टूडेंट वीजा की एक्सटेंशन डालनी होती हैं और जिन्होंने अपनी TR डालनी होती है। कोई भी स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान से वीजा अप्लाई कर रहा होता है या किसी भी और कंट्री से वीजा अप्लाई कर रहा होता है, वो तो बेसिकली स्टूडेंट वीजा ही अप्लाई कर रहा होता है। जब वो ऑनशोर आ जाते हैं तो फिर उन्होंने आके अपनी स्टूडेंट वीजा की एक्सटेंशन भी डालनी होती हैं, अगर वो टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट ना कर सकें या कोई स्विच कर लें कोर्स, एंड देन उन्हीं स्टूडेंट्स ने बाद में TR भी डालनी होती है। सो इट्स अ 50-50 रेशो, लेकिन मोस्टली जो से हैं वो स्टूडेंट्स जो कि TR पे जा रहे थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि TR की फी अभी कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ $2,600 थी, समवेयर अराउंड दैट, और वो एकदम से इंक्रीज करके $4,600 कर दी गई, और अब 4,600 से भी $5,700 से भी ऊपर चली गई है। स्टूडेंट वीजा की फी में हालांकि इतना डिफरेंस नहीं आया, 2,000 थी उसको 2,500 कर दी है, लेकिन जो मोस्ट इफेक्ट हुए हैं इससे वो बेसिकली वो स्टूडेंट्स हुए हैं जो कि TR पे जा रहे थे।
इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही वीजा एप्लीकेंट जो हाल ही में ये वीजा लॉन्च करना चाहते हैं और वो इन्हीं बढ़ती हुई कीमतों से मुतासिर हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि आप कब ये वीजा लॉन्च करना चाह रहे थे और इससे किस तरह से मुतासिर हुए हैं।
अच्छा, मैंने जो है वो मेरा माइंड था कि मैं लास्ट वीक वीजा अप्लाई करूं, लेकिन इंश्योरेंस लेना, इस तरह की चीज़ें सारी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि 1 जुलाई से जो है वो एकदम जो है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फीसेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो लास्ट डे तक, कल तक मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो पूरे थे, खाली एक जो चीज़ थी वो मिस थी। तो रात को जिस टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल पे था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मैसेज कन्वे किया कि आपने TR अप्लाई की है या नहीं। तो तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ की जो है ना वो TR अप्लाई करनी थी, वो ऑफशोर होती हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस तरह आप चेक करें जाके पोर्टल पे, क्योंकि फीसेस वगैरह बढ़ गई हैं। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। क्यों? क्योंकि पहले प्रीवियस जो है ना वो फीस 4600 समथिंग थी, तो उसके बाद एकदम ये जंप लेके फीस 57 समथिंग पे चली गई है। तो जरी बात है, ये एकदम सडन इतना बड़ा जो है वो इसने जंप लिया है। तो प्रीवियस जो है वो मेरा माइंड 46 समथिंग के मुताबिक चल रहा था, तो मैंने उस तरह अपना जो है वो बजट मैनेज किया हुआ था, तो एकदम जो है वो 1000 अबव हो गया काम। तो अब फिर जो है वो चीजें थोड़ी दोबारा सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जरी बात है, फीस इंक्रीज हो गई है तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले फीस जिस जो फीस थी उसके मुताबिक हम लोग चल रहे थे, अब फीस चेंज हुई है, जरी बात है पे तो हम नहीं करना है। तो एट द एंड जो बर्डन है वो जो TR एप्लीकेंट होता है उसी पे आता है, क्योंकि मैं अब इस वीजे को अप्लाई करने जा रहा हूँ वाइफ के लिए, तो अब ये इम्पैक्ट मेरे पे है कि अब मैंने कैसे दोबारा ये चीजें मैनेज करनी है। तेरी बात है, 1000 का एकदम गैप आया, अब मुझे फिर 5 दिन 10 दिन और चाहिए होंगे, क्योंकि पहले मैं 46 समथिंग के हिसाब से चल रहा था, अब मैं 57 पे जाऊंगा तब मेरा वीजा अप्लाई होगा। तो ये चीजें जो है ना, ये एकदम सडन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो एप्लीकेंट होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कम से कम इन चीजों के बारे में जो है वो 10 15 दिन 20 दिन महीना पहले ये चीजें थोड़ी जो है ना वो हाईलाइट होनी चाहिए, ताकि जैसे अब मैं इसका विक्टम हूँ। तो मैंने तो ये वीजा अप्लाई करना था 2 दिन पहले, लेकिन मैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कर सका। अब मैं अप्लाई करूंगा तो मैंने 1100 ज्यादा फीस देनी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चीजें कम से कम एक महीना पहले जो अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि ये चीज क्लियर कर दें, ताकि जिन्होंने अप्लाई उस टाइम करना हो तो वो अप्लाई कर लें। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है।
ये थी आज की पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूँ अफनान मलिक।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।